أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما لا بقية الله في الأرضين، وحجته إلى العالمين. أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. عاشور کی رات آ گئی، اور یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس رات میں سوائے غم کے بیان کے کسی اور بیان کا دل ہی نہیں چاہتا، لیکن چونکہ اس رات کو آقا حسین نے خاص طور پر اپنے اصحاب کی تعریف کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ آدم سے لے کے آج تک اسی نبی کو کسی ولی کو ایسے صحابی نہیں ملے جیسے مجھے ملے. ہم تاریخ انبیاء پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں کوئی ایسا نبی نظر نہیں آتا ہے جس کے ساتھیوں نے آخری وقت تک اس کا ساتھ دیا ہو. انتہائی محبت کا دعویٰ کرنے والے صحابی بھی جب امتحان کا وقت آتا تو ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ کے وہ 12 حواری ہوں جن میں سے ایک نے ان کو بیچ دیا، اور چاہے وہ اللہ کے رسول ہوں جو بدر و احد میں، جو خندق و حنین میں پکار پکار کے اپنے صحابیوں کو بلاتے رہے اور کوئی پلٹ کے دیکھ نہیں رہا. حتیٰ امام علی کے صحابی جنگ صفین میں ادھر نیزوں پہ قرآن بلند ہوئے اور ادھر اکثریت نے علی کے خلاف تلوار نکال لی. ایک جملہ میں اپنی مجالس میں بہت زیادہ کہتا رہتا ہوں، اس سال محفل عباس برمنگم کے عشرے میں موقع نہیں ملا، لیکن ویسے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جب زمانے کا امام آئے گا تو اس کی جو پہلی فوج ہوگی، پہلی فوج جو امام کی پہلی آواز سن کے اپنے اپنے شہروں سے دوڑ کے مکہ مکرمہ میں آئیں گے، اور پھر جب امام اپنا جہاد شروع کریں گے تو 2/3 2/3 امام زمانہ کی فوج کے وہ جانثار، مخلص، سنسیئر جو جبرائیل کی آواز سن کے مکہ میں آئیں، 2/3 2/3 امام کے خلاف ہو جائیں گے. خالی اگینسٹ نہیں، اتنے مخالف ہوں گے کہ اپنی تلوار نکال کے امام زمانہ پہ اٹیک کریں گے. तो बाज़ औक़ात लोग सवाल करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, इमाम अली के जमाने में हो चुका है। इमाम अली इमाम जमाना से ज्यादा अफजल है। यकीनन 12 इमाम एक नूर के टुकड़े, अव्वलोना और औसतोना और आखिरोना और कुल्लोना मोहम्मद के मोहम्मद है, मगर इसमें कोई शक नहीं कि इमाम अली का रुतबा बाकी 11 इमामों से ज्यादा। और इसके बहुत सारे वाकयात भी हैं और ज़हूर इमाम के बाद के हालात में भी ये चीज अलग से मेंशन की गई, क्योंकि शब आशूर की मजलिस है। इसलिए मैं इतने जुमले भी गम से हटकर जो कह रहा हूं तो बहुत ही भारी दिल के साथ ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। इमाम अली जो इमाम जमाना से ज्यादा अफजल है, उनके खिलाफ उनके अपने सिपाहियों ने तलवार निकाल ली। और एक लफ्ज जो अच्छा लफ्ज तो नहीं, इतना प्रेशर इमाम अली पे डाला गया कि इमाम अली को कायनात के बदतरीन इंसानों में से एक मुआविया के साथ सुलो करना पड़ी। खुद इमाम अली ने एक दफा ये कंप्लेन की थी कि नहीं कही की थी, ये इतना खराब जमाना आ गया है कि मेरा नाम और मुआविया के नाम के साथ लिया जाए। लेकिन उसी के साथ इमाम अली को सुलह करना पड़ी। इमाम अली के उन सहाबियों की वजह से जो 15 मिनट पहले इमाम अली के परचम तले अलम के नीचे इमाम अली पे अपनी जान कुर्बान कर देने की बातें कर रहे हैं। और एवरी ईयर 15th ऑफ रमजान और 7th ऑफ सफर को इमाम हसन के हालात में तो आप सुनते हैं और पढ़ते हैं। इतना मजलूम हमारा ये इमाम था, सारे के सारे सहाबी और साथी छोड़ के चले गए। हाकिम शाम ने जब इमाम हसन के फौज के सरदारों को खत लिखा कि मैं तुम्हारा ईमान खरीदना चाहता हूं, तुम बताओ प्राइस क्या है, खुली खुली ऐसी ही ट्रांजेक्शन हुई थी ईमान की, अपने ईमान की कीमत बताओ, जो कीमत तुम बताओगे मैं पूरी प्राइस दूंगा। और बाकायदा ये प्लानिंग हो गई थी कि कल जंग के दरमियान इमाम हसन के अपने साथी इमाम हसन को गिरफ्तार करके मुआविया के हैंडओवर करेंगे। लेकिन चूंकि मुआविया एक पॉलिटिशियन था, उसे पता था कि इमाम हसन की शहादत के कॉन्सिक्वेंसेस कितने बुरे होंगे। यजीद तो बहुत ही अनएक्सपीरियंस आदमी था, तो मुआविया सीजन्ड एक्सपीरियंस, उसने ये सारी डॉक्यूमेंटेशन इमाम हसन को ही भिजवा दी कि ये हैं आपके सहाबी, अपना ईमान मेरे हाथ भेज चुके हैं, कल के बारे में ये प्लानिंग है कि जब आप मैदान में निकलेंगे इस तरह से आपको गिरफ्तार किया जाएगा और आपके साथ ही आपके साथ धोखा करेंगे। इमाम हसन ने सुलह क्यों की? हर साल इमाम हसन की विलादत की खुशहाली में और शहादत की मजलिस में 7th ऑफ सफर को थोड़ा थोड़ा उलमा बयान करते हैं। और करबला की हिस्ट्री समझ में नहीं आ सकती जब तक कि आप इमाम हसन के हालात को नहीं समझेंगे। यही वजह कि मैं शब आशूर यूजुअली ये स्पेशली ये रिकमेंड करता हूं कि ईरान के मीडिया ने इमाम हसन के हालात पर जो फिल्म बनाई है वो खुद देखिए और अपने बच्चों को दिखाइए। करबला आपकी समझ में नहीं आएगी जब तक कि आप इमाम हसन के हालात को नहीं देखेंगे। इतना मजलूम हमारा ये इमाम है। और इमाम हसन की सुलो करबला में इमाम हुसैन को वो फौज दे गई कि इमाम हुसैन ने कहा आदम से लेके आज तक किसी नबी को ऐसे सहाबी नहीं मिले, किसी वली को ऐसे सहाबी नहीं मिले। ये इमाम हसन का सेक्रीफाइस और सुलहनामे पे दस्तखत थे, इसके नतीजे में 20 साल मिले उस ग्रुप को तैयार करने में जो आज शबे आशूर इस तरह से हमारे सामने आता कि हम और आप जब उनको सलाम करते तो खाली हम और आप नहीं, हर इमाम जब उनको सलाम करता है तो कहता है बे अबी व उम्मी, शुहदाए करबला को कहा जाता है मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। खैर ये तो अरबी की एक कहावत है, जो काबिल तवज्जो जुमला है वो इसके बाद का करबला की मिट्टी खाक शिफा। तीन वादे अल्लाह ने हुसैन से किए थे, आए हुसैन तो मेरी खातिर अपनी जान दे रहे हो। तीन वादे हैं अल इजाबा व शिफा वल इमाम। इस गुम्बद के नीचे जो तेरी जरी के ऊपर है जो दुआ मांगी जाएगी वो कबूल। अल इजाबा तहता कुब्बत ही व शिफा फी तुरबत ही, और जो तेरी कब्र की मिट्टी है इसके अंदर शिफा। वल इमाम फी जुर्रियती, और अब जितने इमाम है वो सब तेरी औलाद में, इमामत इजाबत शफा। मगर जियारत वारिसा में शुहदा की जियारत में एक अजीब जुमला आ गया, कब्र हुसैन की मिट्टी खाके शिफा है लेकिन जियारत वारिसा में उसका रीजन कुछ और बताया गया। तिबुतुम वत्ताबतिल अर्जुल लतीफीहा दुफिनतुम, आए असहाबे इमाम, इमाम हुसैन को एड्रेस नहीं कर रहे इस जुमले में, अली अकबर को इस जुमले में एड्रेस नहीं कर रहे, अबिल फजल अब्बास को एड्रेस नहीं कर रहे, शहदाए करबला को अस्सलाम वालेकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बा, अस्सलाम वालेकुम या आसफिया अल्लाह व विद्दा, आखिरी तिब तुम पाक हो। वताबतिल अर्ज, और ये जमीन पाक है, अल्लतीफिया दुफिन तुम, जिसमें तुम दफन हुए हो। आका हुसैन को रुतबा तो बहुत बुलंद, हुसैन को तो हम क्या पहचानेंगे, हुसैन के अदना गुलामों को पहचान लो कि ये जो हुसैन के गुलाम हैं ये जिस जमीन में दफन होते हैं इनकी वजह से जमीन है करबला पाको पाकीजा हुई। ते वो तुम वताबतुल अर्जुल लतीफिया दुफिन तुम, दुफिन तुम जो इसमें दफन हुए हो। वो जॉन हबशी गुलाम जो खुद कहता है कि मौला मेरे हसब व नसब का पता नहीं, मैं बदशक्ल हूं, मेरी स्किन का कलर काला है, मेरा पसीना बदबूदार, मौला मैं कैसे आप पर जान कुर्बान करूं। वो जॉन जिस जमीन में दफन हो रहा है उस जमीन को खाके शिफा बना रहा। हुसैन सिवाय अल्लाह और रसूल के हुसैन की अजमत को कोई नहीं पहचान सकता, मगर आज की रात ये हुसैन अपने इन्हीं असाब पे फख्र करते हुए कह रहा कि आज तक किसी नबी और वली को ऐसे सहाबी नहीं मिले। कुरान करीम की जिस आयत से आज की इस मजलिस का मैंने आगाज किया, ये सूरह मोहम्मद की आयत है जिसमें परवरदिगार एक ऐसा जुमला कह रहा है, आयत जिसकी वजह से आज दुनिया भर के शिया इज्तिमात में लब्बैक या हुसैन की आवाज बुलंद होती, लब्बैक या इमाम जमाना की आवाज बुलंद होती, लब्बैक या अब्बास की आवाज बुलंद होती। असल पैगाम सूरह मोहम्मद की आयत, ऐ ईमान लाने वालों तुम्हें अल्लाह की मदद करना है तुम अल्लाह की मदद करो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, फिर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। पूरी मजलिस ना हो जाए, और गम की रात की मजलिस तो बहुत ही मुख्तसर एक हदीस सिर्फ। रावी ने इमाम से पूछा, मौला ये क्या कह रहा है कुरान के, अल्लाह की मदद करो, और दूसरी जानिब खुद कुरान बार 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 और बार बार कह रहा है कि इन्नल्लाहा गनीयुन अनिल आलमीन, अल्लाह सारी कायनात से बेनियाज है, उसको किसी की जरूरत नहीं। और हदीस कुदसी तो आप सुनते ही रहते, परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि अगर सारे इंसान और सारे जिन मिलकर मेरी इबादत करने लगे और मेरी इताअत करने लगे तो जो मेरा स्टेटस है जौ के दाने के बराबर उसमें इजाफा नहीं होगा, और अगर सारे इंसान और जिन मिलकर मेरी मासियत और नाफरमानी करने लगे तो जो जौ के दाने के बराबर मेरे रुतबे में कमी नहीं आएगी, ना तुम्हारी इताअत की मुझे जरूरत है और ना तुम्हारी मासियत और नाफरमानी मुझे कोई नुकसान पहुंचाती, क्योंकि इन्नल्लाह लगनी अनिल आलमीन अंतल गनी व नहनुल फकीर। मौला की मुनाजात में है ना कि तू बेनियाज है, तुझे किसी की जरूरत नहीं। तो ये क्या कुरान कह रहा, ये जुमला याद रखिएगा, शब आशूर का आगाज इस जुमले से हुआ। अभी बस मैं आ रहा हूं उम्मत साहिब की मंजिल पर। कौन सा जुमला, क्या है, खुदा तू बेनियाज है, हम तेरे मोहताज। लेकिन वही कुरान कह रहा है अल्लाह की मदद करो, तो जो गनी हो जिसे किसी की जरूरत ना हो वो मदद की कॉल क्यों देगा। इमाम ने जवाब दिया कि अल्लाह की मदद का मतलब है अल्लाह की नहीं, अल्लाह के दीन की मदद करो, और अल्लाह का दीन हुकूमतें इमाम जमाना कायम होने तक, जब तक के इमाम जमाना की हुकूमत कायम ना हो उस वक्त तक अल्लाह के दीन को हर जमाने में मोमिन की मदद की जरूरत। इसीलिए हम पलट के कहते हैं कि लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या इमाम जमाना, लब्बैक या अब्बास, हम हाजिर हैं उस मदद के लिए, दीन है खुदा की मदद। इमाम के आने के बाद भी जरूरत है, जब इमाम की हुकूमत इस्टेब्लिश हो जाएगी, पता नहीं 40 साल लगे, 10 साल लगे, 2 साल लगे, इमाम के आते ही ऑटोमेटिक बटन दबते ही हुकूमत नहीं बनेगी, वक्त लगेगा। दीन खुदा को तुम्हारी मदद चाहिए, और अस्हाबे इमाम हुसैन को जो हम सलाम करते हैं तो पहला जुमला ये कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह। ऐ सूरह मोहम्मद की आयत पे अमल करने वालों, ऐ दीन खुदा की मदद करने वालों, तुम पर हमारा सलाम हो। कम थे, खाली 72 थे, बहुत छोटी फौज थी, लेकिन मिलियंस और बिलियंस के ऊपर भारी थे ये 72। कहा जाता है कि आका हुसैन आपने जो कारनामा अंजाम दिया ये अंबिया भी न कर सके। आका हुसैन का रुतबा बहुत बुलंद है, असाबे इमाम ने जो कारनामा अंजाम दिया, लश्कर यजीद मुसलसल इनको ऑफर भेज रहा, वहां टेम्पेशन है। जैसा कि मैंने कहा कि इमाम हसन के सहाबियों को मुआविया ने ब्लैंक चेक भेजा, ईमान बेच दिया, इमाम हुसैन के साहबियों को भी मुसलसल ऑफर आती रही करबला पहुंचने के बाद भी, लेकिन एक साहबी इमाम का ऐसा नजर नहीं आएगा कि इस कैंप से उस कैंप में गया। हां, वहां से यहां आने वाले आपको नजर आए, हुर है, हुर का बेटा है, हुर का गुलाम है, एक दो और भी आदमी, लेकिन नाना रसूल खुदा के सहाबियों को देखा है हुसैन ने, बाबा अली मुर्तजा के सहाबियों को देखा है हुसैन ने, भैया हसन मुश्तबा के सहाबियों को देखा है हुसैन ने, इसलिए जरूरत है कि अपने सहाबियों का भी पहले एक ट्रायल ले लिया जाए। और आशूर की शब असहाबे इमाम के इम्तिहान से शुरू होती है। یہ آج کی رات وہ رات ہے کہ اس کائنات میں آخری مرتبہ آسمان نے فاطمہ کے آباد اور بھرے گھر کو دیکھا. آج کے بعد اب جو یہ فاطمہ کا گھر اجڑے گا, برباد ہوگا, تو قیامت تک کسی حالت میں رہے گا. یہ آخری رات ہے گلستان فاطمہ کے بہار کی. اکثر میں اپنے استاد کا جملہ دہراتا ہوں کہ کل جو رات آنے والی ہے وہ ہے شام غریبہ, وہ غریبوں کی رات, اور آج کی رات ہے شام شہیدہ, یہ شہیدوں کی رات. آج خیمے لگیں, کل خیمے جلے ہوں گے. آج چراغ روشن, کل کربلا کا اندھیرا جنگل اور تاریخ بن ہوگا. آج ہر بی بی کا سہاگ سلامت ہے, کل ان کی مانگ اجڑ چکی ہو. آج ہر ماں کے پاس اس کا لال اس کا بیٹا ہے, کل یہ جوان بیٹے کلیجے پہ برچیاں کھا کے زمین کربلا پہ سو رہے ہوں گے. آج ساری بچیاں محفوظ ہیں, کل ان کے رخسار تماچے کھاتے کھاتے نیلے پڑ چکے ہوں گے. آج کی رات یہ آخری رات ہے اہل بیت کی, خاندان کی رونق دیکھیے. اور حسین, حسین جیسے ہی رات کا اندھیرا چھایا, سورج ڈوبا, مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت آیا, میرے آقا نے پہلے مغربین کی نماز پڑھائی, اور نماز پڑھانے کے بعد کہا, عباس اب میرے تمام صحابیوں سے کہو کہ وہ میرے خیمے کے قریب آ جائیں. چونکہ حسین کا اپنا خیمہ بیویوں کے خیمے کے درمیان تھا, اس لیے عباس کے خیمے میں سب کو جمع کیا گیا. عباس کا خیمہ سیدانیوں کے خیمے سے ذرا ہٹ کر اصحاب کے خیمے کے پاس ہے. ابو تراب کے بیٹے نے آج تراب پر اپنی مسند سجائی, زمین کربلا پہ بیٹھے, اصحاب امام سامنے ہیں. جنگوں سے پہلے جب جنگ ہوتی ہے نا دنیا میں, تو اس سے پہلے والی رات کو وار کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے. آج حسین کی فوج کی میٹنگ ہے, مگر کل کی جنگ کے بارے میں طے نہیں ہو رہا. حسین نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے چہروں کو دیکھا, ہر ایک کو مخاطب کیا جو بوڑھے صحابی تھے, انہیں یہ کہہ کہ اے میرے نانا کے ساتھی ہو, جو مولا علی کے صحابی تھے, اے میرے باپ کے ساتھی ہو, جو حسین کے اپنے دوست ہیں حبیب ابن مظاہر جیسے, اے میرے ساتھی ہو, تم سب کربلا میں میرے ساتھ آئے, اب تک ساری مصیبتیں تم نے میرے ساتھ برداشت کی, دن دن کی پیاس تو ہو چکی ہے نا, میں اپنی بیعت اٹھا کے تمہیں آزاد کر رہا ہوں, تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے. دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں, یہ لوگ میرے دشمن ہیں, تم سے ان کی کوئی دشمنی نہیں, تم جاؤ گے یہ تمہیں جانے دیں گے. ادھر یزید کی جانب سے بلینک چیک کے ساتھ آفر آ رہی, اور ادھر خود امام وقت کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں رضا دیتا ہوں, پرمیشن دیتا ہوں, اجازت دیتا ہوں, جو جانا چاہے جا سکتا. کوئی کچھ نہ بولا, خاموش, سر جھکائے حسین کی بات سن رہے ہیں. بعض علماء یہاں پہ ایک جملہ اور بڑھا دیتے ہیں, حسین نے کہا شاید تمہیں یہ ڈر اور خیال ہو کہ قیامت کے دن میرے نانا کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے, تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں, تم چلے جاؤ, یہاں تک آئے, تم نے آج تک میرا ساتھ دیا, قیامت میں تمہاری شفاعت کراؤں گا. اب ذرا جو ایک جنت کا لالچ اور شفاعت تھی وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. ابھی بھی جواب کسی نے نہیں دیا, سب کا سر جھکا. حسین نے ایک جملہ اور کہا, شاید تم یہ ڈرتے ہو کہ لوگ تمہیں تانا دیں گے, آقا کو دشمنوں میں چھوڑ کے آ گئے, تو چلو ایک کام کرتے, जो मेरे साथ बीबियां आए इनको मदीने ले जाना, वहां पहुंचा देना, कोई ताना दे तो कह देना कि अहले हरम को बचा के लाए। हुसैन ने खुद एक्सक्यूज बना के दे दिए, खामोशी, कोई कुछ नहीं बोल रहा, न यस न नो। हुसैन ने कहा अच्छा, शायद मेरे सामने से उठते हुए शर्म आ रही, असगर बेटा चिराग को गुल कर दो। यह आज रात की बात, जरी के अलावा जो यहां पे अंधेरा है, हुसैन ने आज की रात के शुरू में ही अंधेरा किया। एक मर्तबा का असगर बेटा चिराग गुल कर दो। असगर ने चिराग गुल कर दिया। हुसैन ने कहा तो अंधेरा हो गया, कोई जाएगा तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कौन गया किस तरह गया। अभी भी जवाब कोई नहीं आया, लेकिन अब कुछ आवाजें आ रही अंधेरे में, नजर तो नहीं आ रहा। थोड़ी देर गुजरी, हुसैन ने कहा अकबर चिराग को दोबारा रोशन कर दो। अकबर ने चिराग को रोशन किया, एक भी अपनी जगह से नहीं गया। हां बस वो जो आवाजें आई थी ना, तो थोड़ी तब्दीली आ गई। जो नौजवान हैं इस फौज में वो सीना तान के खड़े हैं, जो बूढ़े हैं उन्होंने अपने अमामे उतार के अपनी झुकी हुई कमर में बांध के कमर को सीधा करने की कोशिश की, जो बच्चे हैं वो पंजों के बल खड़े होकर अपने कद को बुलंद जाहिर कर रहे हैं। हुसैन ने देखा और कहा कि कोई नहीं गया, क्या अभी भी तुम्हारा जाने का इरादा नहीं है? बस ये सुनना था। अब हुसैन के आसाब अब सब्र न कर सके। सबसे पहले तो मुस्लिम इब्ने औसजा खड़ा हुआ, रसूलुल्लाह के जमाने का बूढ़ा सहाबी, कहा हुसैन मैंने तेरे नाना का जमाना देखा, मैंने तेरे बाबा का जमाना देखा, यकीनन जो तू कह रहा है तेरे मुंह पे यही सजता है, यही तेरे नाना का तरीका था, यही तेरे बाबा का तरीका था। हुसैन तुझे हमारी जरूरत नहीं है, मगर हमें तेरी जरूरत है। ठोकरे मार के भी निकालेगा तो पलट के यहीं पे आएंगे। मौला का साहबी बुरैर खड़ा हुआ और एक मर्तबा कहा अरे मेरे आका हुसैन, मैं आपकी बात पे अमल करने को तैयार हूं, लेकिन अपने घर से बेहतर घर बताइए कि जहां चला जाऊं, अपने दर से बेहतर दर बताइए कि जिस दर पे चला जाऊं। तब हुसैन की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि है मेरे साहबियों, ऐसे दोस्त और साथी तो आदम से लेके मेरे नाना तक, मेरे नाना से लेके मेरे भैया तक किसी को नहीं मिले। अब ऐसा करो कि अपने खेमे जहां लगे हैं वहां से हटाकर हमारे खेमों के तीनों तरफ लगा दो, ताकि ऐसा ना हो कि रात को दुश्मन पीछे से आके सैदानियों के खेमों पे हमला करे। हुसैन हर तरह से असाब को हटाना चाहो, और आखिर जब असाब इस इम्तिहान में पूरा उतरे तो हुसैन ने खेमे लगवाए, और उसके बाद असाबे इमाम ने आपस में तय किया कि हम में से बारी बारी एक एक सहाबी जो सैदारियों के खेमे के बाहर पर्दा है रात को वहां पहरा देगा। तीन तरफ तो हुसैन ने खेमे लगा दिए, चौथी तरफ खुली है, बारी बारी एक सहाबी पहरा देगा। ये आपस में असाब ने तय किया, ये उनका अरेंजमेंट है हुसैन का नहीं। सबसे पहली ड्यूटी बुरैरे हमदानी की लगी। हुसैन अब मर्दों के खेमे से पर्दा हटा के औरतों के खेमे की जानिब चले। जैसे ही सैन्य खेमा में दाखिल हुए, देखा ज़ैनब कुबरा बहुत बेचैनी के साथ खेमे के सहन में टहल रही। हुसैन को आता देखा, कहा भैया अपने साहबियों से बात कर ली? हुसैन ने कहा हाँ बहन ज़ैनब, मैंने हर एक से बात कर ली। भैया क्या इनका इम्तिहान ले लिया? एक मर्तबा हुसैन ने कहा हाँ मैंने इनका इम्तिहान ले लिया। कोई ज़ैनब कुबरा की बेचैनी देखे, कहा भैया नाना का जमाना तूने भी देखा और मैंने भी देखा, बाबा का जमाना तूने भी देखा और मैंने भी देखा, भैया का जमाना तूने भी देखा और मैंने भी देखा, ऐसा ना हो आखिरी वक्त में ये सहाबी हमें छोड़ के चले जाए। इससे पहले कि हुसैन जवाब दे ये जुमला, दरवाजे पे जो पहरेदार खड़ा है बुरैर सुन लिया। पर जैसे ही ये सुना, एक मर्तबा असाबे इमाम को देख के आवाज दी, अरे मुस्लिम इब्ने औसजा, अरे हबीब इब्ने मुजाहिर, अरे हिलाल इब्ने नाफा बजली, जरा दौड़ के यहां आना। सारे असाबे इमाम दौड़ के आ गए। बुरैर खैरियत तो है, क्या दुश्मन ने अटैक कर दिया? बुरैर ने कहा, इससे भी ज्यादा सख्त और खतरनाक बात, फातिमा को, फातिमा की बेटी को हमारी वफादारी पे यकीन नहीं आ रहा है, बस इतना सुनना है। असहाबे इमाम ने इतना सुनना, असहाबे इमाम ने अपनी तलवारें निकाली, अपनी गर्दन पे तलवार रखी, आवाज दी, शहजादी ज़ैनब अगर आप हुक्म करें तो अपने हाथ से अपनी गर्दनें काट के आपके कदमों में निछावर कर दे। वो हुसैन ने जुमला कहा था, ऐ मेरे साहबियों, ऐसे साहबी आदम से आज तक किसी को ना मिले। और ये ज़ैनब ने जब ये सुना तो पर्दे के पीछे से कहा, ऐ मेरे भाई के साहबियों, अली और फातिमा की बेटी बाल खोल के तुम्हारे हक में दुआ करती है। और हुसैन ज़ैनब को लेके सैदानियों के खेमे की तरफ आए। एक मरतबा हर बीबी से कहा कि अपने अपने खेमे में चली जाए, और हुसैन अपने खेमे में आ गए। अल्लाह जब भी आपको खेमा गाह में ले जाएगा करबला में, आज भी बिल्कुल बीच में आका हुसैन का खेमा है, हुसैन अपने खेमे में गए। और इसके बाद जिस मकसद के लिए हुसैन ने आज की रात मांगी थी, यही कहकर तो अब्बास को भेजा था कि उमर साहब से कहना कि हमें एक रात की मोहलत दे दे, हम एक मरतबा और जिक्र खुदा करना चाहते हैं। तारीख का जुमला, आज की पूरी रात असहाब हुसैन और औलाद हुसैन के खेमों के करीब से कोई गुजरता तो इस तरह से तिलावत कुरान की आवाज आती, इस तरह से जिक्र खुदा की आवाज आती, इस तरह से दुआओं की आवाज आती कि विद ये नहल, जैसे शहद की मक्खी का जो छत्ता, उसके करीब से कोई आदमी गुजरे तो मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज आती है। सारी रात कुरान, दुआ, जिक्र खुदा, लेकिन आधी रात के बाद हुसैन अपने खेमे से बाहर निकले, हुसैन के खेमे के बाहर बीबियों के खेमे। अब हुसैन मर्दों का इम्तिहान तो मगरिब के वक्त ले चुके हैं, और अब खवातीन को देखना है, एक एक खेमे के करीब से गुजर रहे हैं। और हर जगह हुसैन ने एक ही मंजर देखा, हर जगह एक मंजर, हर बीबी, हर शहजादी कल के जिहाद के लिए अपनी औलाद को तैयार कर रही है। उम्मे फरवा कहती है, कासिम बेटा, तेरा बाबा मेरा आका हसन जिंदा नहीं है, ऐसा जिहाद करना कि लोग हसन की कमी महसूस ना करें। उम्मे लैला हाथ में मोमबत्ती या शमा लेके अकबर के चेहरे को देख रही है, अकबर बेटा आखिरी मर्तबा अपनी माँ को अपनी जियारत करने दे, कल मेरा ये चांद सा बेटा खाक और खून के अंदर आलूदा होगा। हर खेमे में एक ही मंजर। ज़ैनब कुबरा का वाकया तो मैं पढ़ चुका हूं, ज़ैनब के खेमे के करीब से गुजरे, देखा औन और मोहम्मद को सामने बिठाया, और कभी उनको उनके दादा जाफर तैयार के कारनामे सुना रही, कभी उनके नाना हैदर कर्रार का जिहाद बता रही, और कह रही है, बेटा औन, बेटा मोहम्मद, दादा और नाना के हालात तो सुन रहे, कल मैदान में न कहना कि तुम कौन हो, ऐसा जिहाद करना कि फौजे यजीद पुकार के कह उठे, जाफर तैयार के पोते आ रहे हैं, हैदर कर्रार के नवासे आ रहे हैं। लेकिन देखो बेटा हौन, देखो बेटा मोहम्मद, जब फरात पे कब्जा कर लेना, इतना यकीन है अली की बेटी को कि मेरे ये नन्हे नन्हे बच्चे 30,000 के लश्कर को शिकस्त दे के कब्जा करेंगे, जब कब्जा कर लेना तो पानी न पीना, मुझे पता है तुम बहुत प्यासे हो गए, लेकिन जब तक कि असगर प्यासा है तुम में से कोई पानी ना पिए। हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। हर खेमे में यही मंजर, हर मां अपनी औलाद को कल की मौत के लिए तैयार कर रही, लेकिन खुशी के साथ हर मां खुश है। सिर्फ एक खेमे से हुसैन को रोने की आवाज आई, हुसैन ने पलट के देखा, ये कौन सा खेमा जहां से रोने की आवाज आ रही है, तो देखा ये तो रबाब का खेमा। बाकी सारे खेमे हुसैन बाहर बाहर से देखते हुए गए, ज़ैनब किस तरह उन्होंने मोहम्मद को तैयार करें, फरवा किस तरह कासिम को तैयार करें, लैला किस तरह अकबर को, बाहर बाहर से रबाब के खेमे से रोने की आवाज आ रही। हुसैन रबाब के खेमे में दाखिल हो गए, क्या देखा, शहजादी रबाब असगर के झूले पर सर रखे हुए रो रही। हुसैन ने घबरा के कहा रबाब खैरियत तो है क्या, असगर मर गया? कहा कि नहीं मौला, मैं तो अपनी बदकिस्मती पे रो रही हूं। मौला जब मेरी शादी हुई और मैं आपके घर में आई और फिर अल्लाह ने मुझे औलाद दे दी, पहले एक बेटी दी सकीना, फिर बेटा दिया असगर, मैंने अपने आप को कायनात की सबसे खुशकिस्मत औरत समझा। मैं फातिमा जहरा की बहू बनी हूं, मैं जवानाने जन्नत के सरदार हुसैन की बीवी बनी, और फिर औलाद भी मिली और औलाद भी मुकम्मल औलाद, एक लड़का और एक लड़की, एक औरत को और क्या चाहिए। मौला मैंने अपने आप को सबसे खुशकिस्मत समझा, आज मुझे अपनी बदकिस्मती का एहसास हो रहा। मौला अल्लाह ने मुझे औलाद तो दी लेकिन बड़ी औलाद जो चलने के काबिल है वो लड़की है, और लड़कियां मख्तल में जाके जिहाद नहीं करती, और जो मैदान में जाके जिहाद कर सकता है लड़का वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि घुटनों के बल चला के भी उसको नहीं ले जा सकती हूँ। मौला हर बीबी कल के जिहाद की तैयारी कर रही है, ये कयामत के दिन शहजादी फातिमा के सामने कितना सुरखरू होके जाएंगी, हाय रबाब कितनी बदकिस्मत है, औलाद भी मिली और दो मिली मगर दोनों में से कोई भी कल मख्तल में जाके जिहाद नहीं कर सकती। अब मुझे नहीं मालूम आका ने रबाब को क्या कह के तसल्ली दी, मैं होता तो हाथ जोड़ के कहता शहजादी आप समझ रही हैं कि आपकी औलाद जिहाद नहीं करेगी, अरे आपकी औलाद तो ऐसा जिहाद करेगी कि असगर का जिहाद देख के दुनिया अब्बास को भूल जाएगी, और आपकी सकीना शाम के कैद खाने में यजीदियत को कयामत तक के लिए काबिले दुश्मन बना देगी। आपके असगर का जिहाद करबला में, आपकी सकीना का जिहाद शाम में, सारे मुजाहिदीन से ये दो का जिहाद बढ़ जाएगा। लेकिन बहरहाल हुसैन ने देखा हर बीबी तैयार। आखिरी मेरे जुमले, मैं भी बहुत थक रहा हूं, कल भी मजालिस हैं, आपको भी असल में तो मातम करना है, बस आखिरी जुमले, आखिरी रिवायत, आखिरी वाकया। असाब इमाम बारी बारी पहरा दे रहे, हुसैन ने मर्दों का इम्तिहान मगरिब के वक्त लिया, औरतों के खेमे आधी रात को देखे, और फिर नमाज शब का अफजल वक्त आने वाला, फजर से एक घंटा पहले हिलाल इब्ने नाफे बजली की ड्यूटी थी, बारी बारी खेमे का पहरेदार बदल रहा। हिलाल इब्ने नाफे बजली कहते मैंने देखा एक मर्तबा खेमों का पर्दा हटा, मेरा आका हुसैन बाहर आया, और बाहर आने के बाद करबला के मैदान की जानिब चलने लगा। मैं घबरा गया, यहां तो फिर भी असहाबे इमाम के खेमे हैं, आका तो अकेला मैदान करबला जा रहा है जिसके सामने उमर साहब की फौज है, मुझे आका के साथ चल के आका की हिफाजत करना। हिलाल कहते हैं मैं आका के पीछे पीछे चल रहा हूं, मैंने देखा एक जगह पे मेरा आका कमर पकड़ के बैठ गया, मैं जल्दी से करीब आया, कहा आका या अब अब्दुल्लाह हुसैन खैरियत तो है, आप कमर पकड़ के बैठ गए? कहा ये वो जगह जहां मेरा कासिम घोड़ों की टापो तले टुकड़े टुकड़े होगा। मेरा आका खड़ा हुआ, आगे चला, एक और जगह नजर आई जहां मेरा आका कलेजा पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा मौला यहाँ क्या? कहा ये वो जगह है जहां मेरा 18 साल का अकबर कलेजे में बर्ची का फल खा के जमीन करबला पे गिरेगा, मकाम अली अकबर। मैं और आगे बढ़ा, आका हुसैन और आगे बढ़े, मैं साथ साथ हूं। एक जगह मैंने देखा आका सर पकड़ के बैठ गए, मौला ये कौन सी जगह? कहा ये वो जगह जहां मेरी गोद में मेरा शशमाहा हर मौला का तीन भाल का तीर खाएगा। और फिर मैं ये मंजर देख रहा हूं कि आका आगे बढ़ते बढ़ते जरा सी एक नशेब की जगह है वहां गए, और वहां जब पहुंचे तो एक अजीब बात मैंने महसूस की, एक नहीं दो बातें। पहले तो मैंने ये देखा कि ऐसा लगा है उस जमीन की कोई सफाई करके गया, कंकर हटाए गए, पत्थर हटाए गए, जंगल में सहरा में ये सारी चीजें होती, बाकायदा ऐसा लगा कि यहां कोई सफाई करके गया है, कंकर ना रहे, पत्थर ना रहे, कांटे ना रहे, झाड़ियां ना रहे, जमीन को साफ किया। और वहां पहुंचते ही मेरे कान में किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही है, यही वक्त था आशूर की रात, करबला का मख्ताल, रात का अंधेरा, आका हुसैन के साथ हिलाल इब्ने नाफे बजली। जैसे ही मैं वहां पहुंचा मैंने घबरा के कहा कि आका ये जमीन ये तो जरा सफाई वाली जमीन लग रही है। कहा कि हाँ, आधी रात को मेरी माँ यहाँ पे आई थी, कंकड़ों पत्थर हटा दिए थे, जब मेरा लाल जुलजना से जमीने करबला पे गिरेगा उसे तकलीफ ना हो। मौला तो यहाँ किसी बीबी के रोने की आवाज है। कहा मेरी माँ अभी से यहाँ आके बैठ गई है, माँ फातिमा ने मेरा मातम शुरू कर दिया, हाय हुसैन हाय मेरा लाल कह रही है। बस आखिरी जुमला आपसे नहीं कह रहा, आखिरी जुमला खुद शहजादी से कह रहा हूँ, शहजादी आपके लाल को तकलीफ ना हो, आपने अपने लाल को तकलीफ से बचाने के लिए पत्थर हटा दिए, कंकर हटा दिए, कांटे हटा दिए, झाड़ियां हटा दी, लेकिन शहजादी कल आपका लाल जब तीर खाएगा, तलवार खाएगा, बर्छिया खाएगा, नैजे खाएगा, पत्थर खा के जलजना से गिरेगा, तो आप पे क्या गुजरेगी। वाह हुसैना वाह हुसैना।